ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज पता है ना कौन सा दिन है? नवरात्रि शुरू हो रही है और दसवें दिन दशहरा होगा, रावण को जलाएंगे। और हम नशे से कहते हैं कि जिन देवियों की पूजा होती है वो हम ही हैं, शिव शक्ति सेना। पांडव भी शिव शक्तियां हैं ना, हमारा ही ये यादगार है। शिव बाबा से शक्ति लेकर असुरों का संहार करने वाली हम शक्तियां। और जब असुर इस संसार से खत्म हो जाएंगे तो फिर से वो सतयुगी दैवी स्वराज्य आएगा, और वो भाग्य देने के लिए स्वयं भगवान आया है। भाग्य विधाता भगवान हमें भाग्य देने के लिए आया है। और क्या कहते हैं, मैं हथेली पर तुम्हें स्वर्ग देता हूँ, बहिष्ट हथेली पर लाया हूँ। तो भाग्य तो बहुत ऊंचा देते हैं, लेकिन भाग्य का आधार क्या है? क्या है आधार भाग्य का? त्याग। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। बिना कुछ दिए लिया नहीं जाता। और जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कर्मों का बहुत बड़ा गहरा ज्ञान दिया है। बच्चे, आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो एक तरफ तो हम कहते हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे पास आते हैं ना शिविर करने के लिए, तो वो इस वातावरण को देखते हैं, हमारी सेवाओं को देखते हैं, इतना ऊंचा स्थान ये अनुभव करते हैं, इतनी शांति, इतनी पवित्रता, इतना प्यार प्रेम सब देखते हैं। तो यही उनके अंदर से निकलता है कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो। आप जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं, यहाँ तक भी कहते हैं। दुनिया में तो कितना दुख लगा पड़ा है, कितनी अशांति है, मारा मारी है, लड़ाई झगड़े हैं, कलह क्लेश है, तन के कितने रोग हैं, मन के कितने तनाव है, धन की कितनी खींचातानी है, संबंधों में कितना अनबन है। और यहाँ तो देखो स्वर्ग में बैठे आप लोग, यहाँ तक भी हमें कहते हैं। तो ये जरूर कहते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन फिर दूसरी और दूसरे प्रकार के लोग भी हैं, जो हम लोगों को जब देखते हैं सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, कोई गहने नहीं, कुछ नहीं, कोई मेकअप नहीं करते हैं, कोई पार्टियों में जाना, फिल्मों में जाना, होटलों में खाना, वो सब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये भी कह देते हैं आप लोगों का त्याग बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे से नहीं होगा, यहाँ तक भी कहते हैं हमारे से नहीं होगा इतना बड़ा त्याग। इसलिए घबराते हैं, डरते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि आप लोगों का बहुत ऊंचा भाग्य है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं आप लोगों का त्याग बहुत जबरदस्त है। तो फिर प्रश्न उठता है, त्याग है या भाग्य है? क्या कहेंगे, त्याग है या भाग्य है? हाँ, त्याग है, इसीलिए भाग्य है। त्याग से ही भाग्य बनता है। अगर हम ये त्याग न करते होते तो हम यहाँ रहते ही नहीं। हम यहाँ रहे पड़े हैं, यहाँ के निवासी हैं, क्योंकि त्याग किया है दुनिया का। तो जब लोग कहते हैं बहुत त्याग है, तो हम फिर उनको ये भी समझाते हैं कि कौन सा त्याग है, हम क्या करते हैं, कोई सन्यासियों की तरह थोड़ी है जो जंगलों में चले गए, तो उनको भी त्याग कहेंगे, घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, खाना वाना कुछ नहीं पकाते। कई ऐसे सन्यासी जो उनको गृहस्थी लोग आकर के दे के जाते, बस वही खाते हैं। तो उनका त्याग तो जबरदस्त है, अब उनकी भेंट में हमारा त्याग तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं खाओ पियो घूमो, लेकिन मेरी याद में करो, बस ये बंधन जरूर डालते हैं बाबा। न खाने की मना करते हैं, न घूमने की मना करते हैं। सफेद वस्त्र हम पहनते हैं तो बाबा कहते हैं ये तो और ही अच्छा है। आजकल गर्मियों में लोग सफेद वस्त्र ही पसंद करते हैं, सफाई की निशानी है। अब कोई काले काले कपड़े पहने और वो कपड़े मैले हैं, गंदे हैं, कैसे हैं पता भी नहीं चलेगा। कितने कितने दिन वो बांस वाले पसीने वाले कपड़े पहनते रहते हैं। हम लोग तो रोज स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, तो कितना बड़ा भाग्य है ये स्वच्छ कपड़े पहनते हैं हम। काले कपड़े मैले भी हो रहे नहीं हो रहे पता भी नहीं चलता है, पर हमें तो पता चलता है जब सफ़ेद पहनते हैं। तो स्वच्छता की भी निशानी है, सफाई की निशानी है। फिर अगर हमको चार ड्रेस भी होगी मान लो, तो भी हमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि सफ़ेद ही पहनना है। और लोगों को तो चिंता ही लगी रहती है, आज एक ड्रेस पहनी या एक साड़ी पहनी एक कलर की, और कल मान लो वही ड्रेस वही साड़ी पहन के फिर से आए, तो लोग कहेंगे ना क्या आपको दूसरी साड़ी नहीं है क्या, यही पहनी कल भी यही पहनी थी। पता चल जाएगा ना कि भाई कल भी वही पहनी थी आज भी वही पहनी है। और हम लोग अगर वही पहन ले प्रेस करके तो कोई कहने वाला नहीं। अब ये भी कितना बड़ा भाग्य है, भले चार ड्रेस होगी लेकिन हम सफ़ेद है, स्वच्छ है, साफ है, और वो काले कलूटे पता नहीं क्या क्या कैसे पहनते हैं। हम तो विदेश गए थे, वहाँ तो हमने देखा यंगस्टर्स जो यूथ है वो लेदर के कपड़े पहनते हैं, लेदर का कोट, लेदर, आप सोचो चमड़ा, चमड़े का पहनते हैं। आजकल ये फैशन हो गया है, तो बताओ और कहाँ का वो चमड़ा और कहाँ वो कपड़े पहनते हैं। तो हम तो कहते हैं तो बड़ा भाग्य है, और दूसरा फिर हम कहते हैं ये हमारा यूनिफॉर्म है, हमारा यूनिफॉर्म है। आज कोई कंपनी के वर्कर्स हो या स्कूल में बच्चे जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, और यूनिफॉर्म में है तो उनको महसूस होता है कि वी आर ऑन ड्यूटी, हम स्टूडेंट हैं, हम ड्यूटी पर है, क्योंकि यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है। तो हम लोग भी तो यूनिफॉर्म है हमारा, वी आर ऑन ड्यूटी, गॉडली ड्यूटी, गॉडली सर्विस हम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो गॉडली वो जो सर्विस होती, चलो 8 घंटा यूनिफॉर्म पहनते, सारा दिन रात थोड़ी पहनते हैं। तो हम कहते हैं हम तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी है 24 घंटे ऑन ड्यूटी है, रात को भी ड्यूटी है। बाबा देते हैं ना, बाबा कहते ड्यूटी शब्द न कह करके सेवा शब्द कहो, वो जरा पॉजिटिव शब्द है। 24 घंटे हम सेवारत हैं। मिलिट्री के लोग क्या करते हैं, हमने देखा, मैं कश्मीर ले लद्दाख गई थी तो वहाँ लद्दाख में मिलिट्री कैंप था, तो वहाँ हमने उन्हें भाषण करना था, तो वो बता रहे थे कि हमको यहाँ हर वक्त विजिलेंट रहना है, एकदम सावधान रहना है, कभी भी बुलावा आ जाएगा। तो हमको रात को भी यूनिफॉर्म में सोना पड़ता है, केवल यूनिफॉर्म नहीं, जूते भी पहन के सोने पड़ते हैं। अब वो जूते भी उतार नहीं सकते, यूनिफॉर्म तो उतार ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जब बुलावा आता है तुरंत जाना पड़ता है, जूते पहनने में भी तो 10 मिनट लग जाएगा, तो वो भी नहीं, बस जैसे बुलावा आया उसी वक्त उसी घड़ी हमें जाना होता है। तो 24 घंटा हम लोगों को यही यूनिफॉर्म रहता है। तो वी आर ऑल्सो ऑन गॉड्स ड्यूटी ना, गॉड्स सर्विस। तो इसीलिए अच्छा है, और ये होगा तो बाबा की याद भी रहेगी। चलो और चलो कोई जेवर वेवर पहन ले, आजकल तो कितना डर है, कितना डर है, जेवर पहनते हैं वो तो कौन कुंडल निकाल के ले जाएगा, कोई आपका वो हीरे की अंगूठी काट लेगा, आपकी उंगली काट लेगा, आपके पास अगर कुछ भी है तो कोई भी चोर लूटने में देरी नहीं करेगा। आजकल तो चेन पुलर्स भी बहुत होते हैं, चेन भी खींच के ले जाते हैं, बहुत फैशनेबल पर्स होगी तो उसको भी काट लेते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अब हम लोग इतने सिंपल, तो कोई डर ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं कोई चिंता है कि कोई हमको लूटेगा, क्या लूटेगा। एक मिसाल देते, एक बहन अपना अनुभव सुनाती थी, सुनाया था उसने कि वो सवेरे अमृत वेले 4 बजे सेंटर पर योग करने के लिए जाती थी। तो एक दिन 4 बजे सवेरे गई तो एक तो सब तैयार होके नहा धो करके बैज भी लगा करके गई, तो वहाँ एक डाकू आ गया, उसको कहा ये सोने का ये निकाल के दो। अब वो तो निश्चिंत थी, सोने होने का तो है नहीं, ये तो सब हाँ कितना होगा, तो बिल्कुल डरी नहीं। और उसने और ही क्या किया, वो जो डाकू था या जो भी, उसने उसको ज्ञान देना शुरू कर दिया, देखो ये परमात्मा है, देखो ये हाँ ये हमारा लक्ष्य है, आदि आदि ये सब उसको ज्ञान देना शुरू किया, इतनी निर्भय होकर के भगवान का परिचय देने लगी। वो व्यक्ति तो वही उसको हाथ जोड़ दिया, हाँ जाओ माता जी जाओ चलो ले भी लेगा तो बैच लेगा तो अच्छा है ना, उनकी सेवा हो जाएगी। पर किसी को अगर कोई ऐसी कीमती चीज़ होगी तो डर कितना रहता है। मुझे याद है मैं मुंबई में रहती थी तो ट्रेन में आना जाना रहता था, तो कई ऐसी माताएं ना वो मंगलसूत्र पहनते हैं महाराष्ट्र में, तो अचानक कोई माता चिल्लाएगी मेरा मंगलसूत्र चला गया, मेरा मंगलसूत्र चला गया, किसने उठा लिया मंगलसूत्र उठा लिया। वो दूसरी माताएं देखती है मेरा तो है ना और उनका चला गया कोई बात नहीं मेरा तो है ना, तो अपना मंगलसूत्र से पकड़ करके उतरती थी, ट्रेन से उतरती थी। कितना डर, बहुत डर, डर ही डर है, कुछ भी कभी भी हो जाए, डर ही डर। और इतने बड़े बड़े वो कान में पहनते हैं, तो कई हम गांव की माताओं को देखते हैं ना, वो बड़ा बड़ा सोने का पहनते हैं तो वो कान ही कट जाता है, वो एकदम कान में कितना छेद हो जाता है। तो ऐसा क्या सोना पहनना जो कान ही कट जाए, ऐसा क्या हीरे की अंगूठी पहनना जो आपकी उंगली को ही काट के ले जाए, ऐसे किया है। कई एक माता थी अपना हीरे की उंगली शो दिखाती थी, देखो मेरी हीरे की अंगूठी है, हीरे की वो चमक थी बहुत, हीरे की सच्चा हीरा था, और कब कहाँ वो उसकी उंगली काट के वो लेके गया पता भी नहीं चला, अंगो रोती रह गई, खून 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 हो गया, उंगली काट दी, पता भी नहीं चलता है। तो डर कितना है दुनिया में, हर बात में डर, और मृत्यु का तो कितना बड़ा भय है, हाय मर गई, कईयों के तो मुख से सारा दिन हाय मर गई, हाय मर गई, है मैं मर गई, मैं मर जाऊंगी, मरना उनके मुंह पर ही है कईयों के। और बाबा भी हमको मरना है जीते जी, मरना है मरना, वही सिखाते हैं भगवान क्यों आए हैं सृष्टि पर। जीते जी मर जाओ, इस दुनिया को जीता न देखो, आप मोए मर गई दुनिया, दुनिया को देखते हुए नहीं देखो। तो हम भी मरने की बात कर रहे हैं, वो भी मरने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतर कितना है। वो डर डर के मरने की बात कर रहे हैं और हम कहते हम तो मरे ही हुए हैं। हम तो मरे ही हुए हैं, देह अभिमान से तो मरे हुए हैं ना। और हमें तो आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, इसलिए मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं तो अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। वो शरीर तो खत्म हो जाएगा ना, आत्मा थोड़ी मरेगी, तो मैं तो आत्मा हूँ, तो और ही भय खत्म हो जाता है, निडर बन जाते हैं। दुनिया में भय ही है, कदम कदम पर भय है। इसीलिए लोग आकर कहते हैं आप लोग कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर हैं हम। आप अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, उनको ये भी डर है कहीं बॉम्ब हमारे ऊपर न गिरे, हाँ बॉम्ब हमारे ऊपर न गिरे, और हमको डर है। बाबा ने कह दिया ये आबू जो है सबसे सुरक्षित स्थान है, सबसे सुरक्षित स्थान। भारत में भी कई जगहों पर जाते कितना डर लगता है, सागर के किनारे रहने वालों को तो बहुत चिंता होती है, कभी भी ये सागर उछल खाएगा। बाबा हमेशा मुंबई वाले, कलकत्ता वाले, इनको सबको हमेशा कहते हैं कि आप कभी भी सागर लेगा पूरा पानी, वो जमीन वापस ले लेगा जो जमीन सुखा सुखा करके शहर बनाया है। कितना कितना सुखाया मुंबई, देखो क्या बन गया है। लेकिन हमेशा वो सागर के किनारे पर रहने वालों को बहुत डर रहता है कि कभी भी ये सागर उछाल मारेगा। सुंदर तो लगता है, बड़े खुश होते हैं सागर सामने है, लेकिन डर बहुत है। अब यहाँ तो कभी बाढ़ आ ही नहीं सकती है माउंट आबू में। अगर बारिश भी तेज भी पड़े तो पानी तो नीचे बह जाएगा ना, यहाँ तो नहीं बाढ़ आएगी ना। बाढ़ तो देखो बाढ़ कैसे आ जाती है पता भी नहीं चलता है। तो डर ही डर है। अब इतना डर है तो भाग्य भी कहाँ समझेंगे, तन के भी कितने रोग हैं। किसी ने कुछ कह दिया मन इतना अशांत हो गया, और किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए पता भी न चले। तो एक हिसाब से तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, और बाबा के बच्चे हैं तो बाबा कहते कहां भी रहो हम, आप अपने आप को बाबा की छत्र छाया में अनुभव करो। अगर वो छत्र छाया का अनुभव नहीं है तो माया की छाया है, और जहां बाबा की छत्र छाया है वहां तो कोई डर नहीं। और बाबा कहा रक्षक बाबा बैठा है रक्षा करने वाला। मैं अभी कुछ साल पहले श्रीलंका गई थी, तो श्रीलंका में एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी। वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई तो कहती है कि ये मेरा नया जन्म है। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, क्या हुआ जो नया जन्म है। तो बता रही थी कि ये अपनी कुछ सखियों के साथ सागर के किनारे गई थी। श्रीलंका विचारों और पानी पानी है, सागर है, और उसी वक्त सुनामी आया था इंडोनेशिया में, और वो सागर में आया था, और उसके बाद मतलब भूकंप आया था सागर के नीचे, और उसके कारण बहुत ज़बरदस्त उछाल आया था और सुनामी हुआ था कई, उसमें श्रीलंका में भी हुआ। तो कहते हैं कि हम उस समय तीन बहनें थी, हम लोग सागर के किनारे टहल रहे थे कि अचानक सुनामी की इतनी जोर से वेव आई। अब उसी समय हम लोग जैसे पानी में बह गए। तो अब मेरे साथ जो दो बहनें थी वो तो ज्ञान में नहीं थी, लेकिन मैं ज्ञान में थी। तो मैंने उसी समय कहा बाबा, इतना जोर से कहा, और क्या चमत्कार हो गया कि वो लहर जो लेके जा रही थी ना, उसी लहर के बीच में एक ऐसी लहर आ गई जो वो लहर मुझे जमीन पर लेकर आई। और वो दो बहनें तो बह गई, वो तो मर गई, लेकिन वो बीच में लहर आ गई, जैसे मैंने बाबा कहा और वो लहर मुझे धरती पर ले आई और मैं बच गई। तो बताओ, बच गई खाली बाबा कहा, और बाबा ने उसकी कैसी रक्षा की। हाँ, तो ऐसे समय पर बाबा याद आए तो बाबा रक्षक बैठा है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन बता रही थी कि हम बिहार में थे, बिहार में कहीं भूकंप आया था, सवेरे 4:30 बजे भूकंप आया था, जबरदस्त भूकंप। तो उनको पूरा फ्लोर था सेंटर में, पूरा एक मंजिल। तो इस तरफ उनका बेडरूम था और इस तरफ उनका बाबा का कमरा था। तो ये 4 बजे उठ करके बाबा के कमरे में बैठी थी और लगभग 4:30 बजे भूकंप आया। ऐसा जबरदस्त भूकंप था जो उनका सेंटर का जो मकान जहां उनका बेडरूम था, सोने का कक्ष, वो तो नीचे से गिर गया, पर जो बाबा का कमरा था ना, उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो बच गए। हाँ, तो देखो, हाँ, बच गई। अगर वो अमृत वेला नहीं उठी होती तो क्या हाल होता उनका, भूकंप में खत्म हो जाती होती। और बाबा कैसे मदद करता है। अभी भोपाल की बहनें भी अपना अनुभव सुनाती थी, जिस समय वो भोपाल में वो गैस कांड हुआ था। हाँ, गैस कांड, वो रिसाव हुआ था ना गैस का, और कैसे कितने लोग भागे थे, भागे थे, भागे, एकदम सोचा पता नहीं कहीं आ गए, क्या है क्या है, और जो भागते रहे ना, श्वास उनका फूल गया और वहीं मर गए। लेकिन वो तीन बहनें थी सेंटर पर, बहुत दूर नहीं था उस जहां वो फैक्ट्री थी जहां से रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड। तो उनको जैसे बाबा की उस समय टचिंग आई। क्या टचिंग आई, क्योंकि जा तो कहीं सकती नहीं, कहां जाएगी, चलो मरना है तो मरेंगे। लेकिन जैसे बाबा की टचिंग आई कि सब खिड़कियां बंद कर दो, क्योंकि तो इतना गैस, इतना उसका, इसकी इतनी बदबू थी, तो सब खिड़कियां बंद कर दो, बिल्कुल खिड़कियां बंद कर दी। और जैसे बाबा उनको एक एक बात कहता जा रहा है, अभी पूरा पंखा चलाओ, एकदम फुल स्पीड पर पंखा चलाओ। और प्यास लगने लगी तो खूब पानी पिया, फुल पंखा, सब खिड़कियां बंद। से बाबा उनको कह रहा है बच्ची ये करो, बच्ची ये करो, और बिस्तर पर सो जाओ पूरा कंबल ओढ़ करके, बिल्कुल। और यही उन्होंने किया। और जो भागे भागे अपनी जान बचाने के लिए वो तो गए, और ये तीन बहनें एकदम सुरक्षित, कुछ भी नहीं हुआ उनको। फिर जब डॉक्टर के पास गई दिखाने, तो डॉक्टर को ये सब बताया कि कैसे हम लोगों को जैसे भगवान ने टच किया, खिड़कियां बंद करो, पंखा फुल स्पीड पर चलाओ, और खूब पानी पियो, और कंबल ओढ़ के ऐसे सो जाओ जैसे बिल्कुल बाहर की हवा ना आए, और बच गई। तो डॉक्टर ने कहा ये तो आपको भगवान ने, भगवान आपका डॉक्टर बन करके आपको सारा बताया, भगवान ने बताया। तो बाबा तो है ना सर्जन हमारा, और बिल्कुल सही टचिंग आई, आकर के अनुभव सुनाया था उन्होंने। फिर तो अगले दिन तो वो दूसरे सेंटर पर चली गई। मानो इतना दुनिया में सबसे बड़ा गैस कांड हुआ था वो भोपाल गैस कांड। तो देखो हाँ, भोपाल का कोई है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ तो अब भोपाल नहीं है ना। तो देखो बाबा कैसे रक्षक बनता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं मेरी याद में हर काम करो। आज भी बाबा ने कर्मयोग बताया। कर्मयोगी किसको कहेंगे? तो आज का वरदान भी बहुत सुंदर था। कर्मयोगी की परिभाषा बाबा ने वरदान में कही। कर्मयोगी किसको कहेंगे? जो सर्वप्रथम अकाल तख्त पर विराजमान हो, अकाल तख्त पर विराजमान हो करके कर्म इंद्रियों का राजा बन करके हर कर्म करे। तो हर कर्म इंद्री का राजा बनकर जब हम कर्म करते हैं तो हमारी सर्व कर्म इंद्रियां हमारे वश में होती है। और फिर बाबा की याद से, क्योंकि अकाल तख्त पर विराजमान है और कर्म इंद्रियां कंट्रोल में, तख्त पर अगर बैठे नहीं है तो ये हमारे कर्मचारी क्यों हमारा कहना मानेंगे? तो अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा हूं तो बाबा की याद की भी छत्र छाया है। तो इंद्रियां भी हमारे वश में है, वो भी सही काम करेगी, मन बुद्धि संस्कार भी सही कार्य करेंगे और जो भी हमारा कर्म होगा वो सफल होगा। कर्म सफल होगा माना सफलता हमारा जन्म से अधिकार बन जाएगी। पर अगर बाबा की याद नहीं, हम देह अभिमान में हैं, तो कर्म भी हमारा या तो निष्फल जाएगा या तो व्यर्थ जाएगा या तो पाप कर्म बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भाग्य भी तब बने जब इतना अपने ऊपर अटेंशन हो, नहीं तो श्वास संकल्प समय शक्ति सब व्यर्थ कमा रहे हैं। दुनिया में यही हो रहा है ना, जिसके पीछे दौड़ रहे हैं वो तो खत्म होने वाला है। और बाबा कहते हैं तुम बच्चे सब भरतू जाओगे, हाथ भरतू, क्योंकि कमाई साथ में ले जाओगे और वो सब हाथ खाली जाएंगे। तो भाग्य हमारा तब बने जब पहले ये देह अभिमान का त्याग हो। और देह अभिमान जो सब विकारों की जड़ है उनका अपने आप त्याग हो जाता है। और जब वो सहज त्याग हो जाता है तो हमको त्याग त्याग लगता नहीं है, वो भाग्य महसूस होता है। क्योंकि हम ये अनुभव करते हैं कि जो कुछ भी हम सेवा कर रहे हैं ये सेवा ही मेवा बन जाती है। सेवा मेवा बन जाए, वैसे कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। तो दुनिया में कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि हमको मिलेगा क्या, हमें क्या मिलेगा जो मैं ये करूं, कुछ मिलेगा मेरे सामने, कोई टेम्पटेशन हो, कोई प्रलोभन हो तो मैं करूं। और यहाँ तो हम कहते हैं सब त्याग मूर्त आत्माएं हैं, मैं किसकी सेवा इसलिए नहीं करती हूँ कि वो मुझे 100 रुपया या 500 हजार रुपया देगा, कुछ नहीं चाहिए हमको, तो भगवान खिलाने वाला है, मनुष्य थोड़ी खिलाते हैं। और जो अगर कोई देता भी है तो यज्ञ में देता है, हमको नहीं चाहिए, भगवान हमको खिलाता है। वैसे भी भक्ति में कहते भगवान खिलाता है, तो अगर हम किसी की सेवा करते वो मुझे खिलाता है क्या? अगर उसको भी मिलता है सेवा का फल तो वो भी भगवान देता है, वो भी ईश्वर के नाम पर करता है। तो बीच में शिव बाबा आ गया तो अपना हिसाब किताब नहीं बनता है, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा ना, क्योंकि आपने शिव बाबा को दिया और शिव बाबा का समझकर शिव बाबा के कार्य में लगाया और शिव बाबा के भंडारे से हम खाते हैं। तो शिव बाबा का दिया हुआ है और आपको भी शिव बाबा ने दिया है, आप शिव बाबा के यज्ञ में देते हैं, क्योंकि यही त्याग का भाग्य है, यही त्याग का भाग्य, हिसाब किताब भी नहीं बनता है। और लोग करते इतना है पर चाहते इतना इतना मिले, एक घंटा कुछ काम करेंगे समझेंगे कि हमको कम से कम 10 घंटे का मिले। तो वहां तो बाबा कहते हैं बिजनेस है और सच्ची सेवा नहीं है, बिजनेस है वो तो लेन देन हो गया। और यहाँ त्याग ऐसा है जो बाबा कहते हैं चलो भाग्य मिलेगा भविष्य में, लेकिन अभी वो संबंध अभी संकल्प नहीं है। जो कुछ दिन भी कल भी बाबा ने कहा मैंने इतनी सेवा की, मेरा मान होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा शान होना चाहिए, मेरी महिमा होनी चाहिए। कई कहते हैं ना थोड़ी सी सेवा करके आए तो अभी सेंटर पर आए और किसी ने पानी भी नहीं पूछा, अच्छा आप लोग इतनी सेवा करके आए हो, खाना पीना खाओ, आप लोग कहाँ खाना बनाया होगा यहीं खाओ, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं। चलो भोजन के लिए ऑफर नहीं किया पर पानी पीने के लिए भी नहीं कहा कि आप थोड़ा पानी तो पी लो, भूख ठंड प्यास लगी होगी। और हम इतनी सेवा करके आए, अब वो भी बाबा कहते संकल्प आया तो क्या हुआ हा? वो जो आपने सेवा का भाग्य बनाया वो भाग्य खत्म हो गया। तो भाग्य खत्म भी कैसे जल्दी होता है, क्योंकि इच्छा है कुछ प्राप्ति हो। और कर्म योग की जहां बात आती है तो कर्म योग का सिद्धांत ये भी कहा है कि कर्मणे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर आपका पूर्ण अधिकार है। आज भी बाबा ने कहा, आज भी था ना वरदान में था या क्या, कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, पुरुषार्थ जैसा होगा प्रारब्ध तो मिलेगी। ये तो हो नहीं सकता कि आपने को कर्म की आपको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अभी अगर फल सोच करके वो कर्म किया तो वो फल आधा कट जाएगा। फिर नाम मान शान की इच्छा रखी तो फल जैसे पूरा ही कट जाएगा, क्योंकि चलो नाम मान शान मिल गया, प्राप्ति हो गई उसी समय, आगे का बचाया क्या, उसको संचित क्या किया, संचित तो कुछ किया ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कर्म करो वो आपके हाथ में है, पर फल की चिंता मत करो, फल भगवान देने वाला है, किसी का भी भगवान रखेगा नहीं, किसी का न पाप कर्म रखेगा न पुण्य कर्म रखेगा, सब उसको रिटर्न ही आएगा। कलयुग आज बाबा ने मुरली में कहा कि वो ओथ लेते ना, ये प्रण लेते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा ना, जज के सामने कहते हैं, लेकिन होता है सब झूठ। तो क्योंकि झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है, लेकिन जो सचमुच हर एक को अपने कर्मों का फल मिलना है या उनकी सजा मिलनी है पापों की, वो केवल धर्मराज के पास है, आज बाबा ने साफ कहा, क्योंकि अंत में तो न्याय मिलना ही है। इसलिए हमारा कर्म कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु हम खुद ही अपनी सोच से उसको नष्ट कर देते हैं। कही होते ना समझो कोई मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में दान दक्षिणा दी जाती है, तो कहेंगे मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, मंदिर के लिए मैंने इतना दिया सबसे ऊपर नाम, तो बिडिंग करते हैं वो, तो उसमें सबसे ऊपर मेरा किससे कितना कितना किया है, तो वो लिस्ट बनती है इतना दिया इतना दिया, मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर मैं करूँगा। अब नाम मिल गया उसको, वो नाम आ गया कि फलाने ने इतना दिया इतना दान किया, अब नाम में उसकी कमाई हो गई खत्म, बाकी वही भाग्य बिल बन गया, आगे क्या मिलेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए त्याग की जहाँ बात आती है वहां पर यही कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, दरिया दिल बनो, बड़ा दिल रखो, भगवान देने वाला है। और बाबा कहते हैं बाबा इतना देता है इतना देता है जो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर यहाँ त्याग चाहिए। सुबह से लेकर रात्रि तक कितना त्याग है, सबसे पहले तो नींद का त्याग। अगर रजाई ओढ़ के सोएंगे तो रजाई नहीं मिलेगी, बाबा कहते हैं अमृत वेला उठना है। परंतु वो अगर त्याग किया तो कितना भाग्य बन जाता है। बाबा वरदानों से हमारी झोली बढ़ती है, सारे दिन की शक्ति मिल जाती है, श्रेष्ठ कर्म करने का हाँ जैसे हमें लक्ष्य मिल जाता है, उसी समय भगवान के वरदान हमारे झोली में भर जाते हैं। थोड़ा सा त्याग किया, नींद का त्याग किया, भोजन हम शुद्ध भोजन खाते हैं, अशुद्ध भोजन नहीं खाते, अपने हाथ से पकाते हैं और बाबा को भोग लगाकर खाते हैं। जो बाबा को भोग नहीं लगाया जा सकता है वो हम भी नहीं खाएंगे, कि पहले भोग लगाना है फिर खाना है। भले कुछ भी भोग लगाओ। एक बार दादी जानकी जी क्लास करा रहे थे कि कैसे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप भोजन पका नहीं सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आज तो मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब कुछ भी नहीं खाऊंगी, चलो ठीक है आप मत खाओ, लेकिन बाबा को तो भोग लगाना है ना, तो उठ के बनाना तो होगा ना, कुछ तो बनाना होगा क्योंकि बाबा को भोग लगाना है। ऐसे थोड़ी बाबा को भोग नहीं लगाएंगे। तो दादी ने एक बड़ी अच्छी युक्ति बताई, अब बाबा को भोग लगाना है, मेरी इच्छा तो नहीं है खाने की, लेकिन खुशी से कहो, अभी पेट तो मांगता है ना, तो कहो आज हम बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएंगे, क्योंकि मुझे खिचड़ी खानी है और कुछ नहीं खाना है। तो ये तो कह सकते हो ना, चलो बाबा आज हम आपको खिचड़ी का भोग खिलाएंगे। तो ये नहीं आज तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो इसलिए भोग भी नहीं लगाना है, पर बाबा को लगाना है इसीलिए चलो खिचड़ी का ही भोग सही, तो कम से कम आपको भी तो मिल जाएगा ना, बाबा को भोग लगाना है। माताएं होती है ना, चलो हमको दिल नहीं होते कुछ भी खाने, बच्चों के लिए बनाना है, पति के लिए बनाना है ना, बनाना है ना। तो इसीलिए त्याग तो कुछ चाहिए, और फिर भाग्य क्यों नहीं बनता है। भाग्य इतना जबरदस्त बाबा हमारा बना रहे हैं, जो कदम कदम में पद्मों की कमाई है, कदम कदम पर पदम। पदम के दो अर्थ होते हैं ना, एक पदम माना जो संपत्ति में पदम, और दूसरा पदम मतलब होता है कमल का फूल। तो कदम कदम में पदम माना हर कदम पदम की तरह रहना, न्यारा और प्यारा होकर रहना। तो जितना हम न्यारा और प्यारा होकर रहेंगे उतना पद्मों की कमाई करेंगे, जितना हम बैलेंस रखेंगे उतना ब्लेसिंग लेंगे। तो हर जगह त्याग और भाग्य है, बिना त्याग के भाग्य नहीं और बिना भाग्य के त्याग भी नहीं। जब कहते हैं ना आप लोगों का कितना बड़ा भाग्य है, तो हम कहते हैं त्याग किया इसलिए भाग्य है। फिर जब कहते आप लोगों का कितना बड़ा त्याग है, तो त्याग है उसके कारण कितना बड़ा भाग्य है, ऐसे थोड़ी कोई यहाँ रह सकता है। अगर त्याग किया हुआ न हो तो यहाँ रह भी नहीं सकता है। इसीलिए त्याग और भाग्य को अलग न करें। बाबा ये भी कहते हैं कि आप कोई सेवा करके आए, चलो उस समय थकावट हुई, कुछ भी हुई, सेवा तो बहुत अच्छी हुई, पर जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी जो प्राप्ति हो प्राप्त हुई, उसे आपकी थकावट एक सेकेंड में दूर हो सकती है। बाबा कई बार कहते हैं आप मिलो चले जाओ, पैदल चलो, पर बाबा की याद में चलो तो आपको थकावट जरा भी नहीं होगी। तो बाबा की याद में रहना माना और कुछ भी सोचना नहीं है, ये त्याग है, और कुछ भी नहीं सोचना, और उसका भाग्य तुरंत मिलता है, जो थकावट ही नहीं होती है, बाबा की याद में उड़ते रहते हैं, खुशी होती है। बाबा की सेवा में उड़ते रहते हैं। कई बार बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, बच्चे बहुत बहुत सेवा करते, एग्जीबिशन समझाते, ये समझाते वो समझाते, सारा दिन बोल बोल करना पड़ता है और फिर उनका गला बैठ जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए गला बैठ गया क्योंकि बाबा की याद में नहीं किया। अगर बाबा की याद में करते होते ना तो थकावट भी नहीं होती और गला भी नहीं बैठता। पर बाबा की याद में नहीं, कंपटीशन, ये इतनी पार्टी समझाता मैं इनसे ज़्यादा समझाऊंगा, तो जहाँ कंपटीशन आ गई बाबा तो भूल गया। फिर नाम मान शान वो याद आया तो देखो उसकी सजा क्या मिली, गला ही बैठ गया। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि जो भी करो बस बाबा की याद में निश्चिंत होके करो, बाबा बैठा है। कोई विघ्न आया, कोई समस्या आई, बाबा को दे दो, छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। कोई गलती करे क्षमा कर दो, भूल जाओ, ये भी त्याग है। बदला लेना या बदल कर दिखाना कितना अंतर है। तो बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। तो बदल कर दिखाना माना त्याग, और बदला लेना समझते कि मैं इसका बदला लूंगा, पर और दुश्मनी बढ़ा ली। कई बार कई भाई बहने कहते हैं बहन जी इतना लोग बोलते हैं, इतना बोलते हैं, ग्लानी करते हैं। अरे ब्रह्मा बाबा की ग्लानी कोई कम की था क्या? आप क्यों चिंता करते हो? ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गालियां खाई। शिव बाबा कहते हैं मैंने कितनी गालियां खाई भक्ति मार्ग में, तो हम भी थोड़ी खा ले, इसमें क्या है। पर अगर हम अपने स्वमान में हैं तो कोई 10 गाली भी दे क्या फर्क पड़ता है? बाबा ने तो हमें इतना ऊंचा स्वमान दिया है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कोई दुख देता है तो आप लेते क्यों? आपने लिया ही क्यों? उसने कहा कि आप तो आप उसको लो ही मत, तो ठीक है उसका वही उसकी सोच है, ये हिसाब किताब पूरा हो गया। तो उसमें भी अगर आपने त्याग किया वो भाग्य बन जाएगा। बड़ा दिल रखा, त्याग किया, बड़ा दिल चाहिए त्याग करने के लिए भी। कंजूस त्याग नहीं कर सकता है। तो बड़ा दिल रखा और सहज त्याग किया, बाबा को दे दिया, बाबा आप संभालो, पर मेरा है मेरा है उसको पकड़ के रखा, त्याग नहीं किया, तो फिर बोझ महसूस होगा, भारी पन महसूस होगा। और बाबा को दे दिया, त्याग किया, बाबा 100 गुना रिटर्न खुशी देगा, शांति देगा, प्रेम देगा। इसीलिए त्याग को त्याग मत समझो, ये त्याग नहीं है, भाग्य है। उसको भाग्य समझेंगे तो वो भाग्य अनुभव होगा, खुशी होगी। पर त्याग समझेंगे तो त्याग महसूस होगा, हाय मेरे इतना त्याग करना पड़ता है, इतना त्याग करना पड़ता है। पवित्रता की बात देखो, बाबा कहते एक जन्म मेरे खातिर पवित्र रहो, बस एक जन्म। 63 जन्म तो तुम पतित विकारी बने और नीचे उतरते आए कलयुग अंत में पहुंच गए हैं। अब मैं आया हूं तुम सबको घर ले जाने, नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, सद्धर्म की स्थापना कर रहा हूं, उसके लिए पवित्रता की मदद चाहिए। अब पवित्र रहना है ये भी इतना बड़ा त्याग है, त्याग है ये। ऐश आराम और विकारी जीवन तो बाबा कहते वो तो त्याग क्या है, वो पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा, वो भाग्य पा रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, आगे कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जहां अंदर में ये सोच है कि ये बाबा के खातिर है, नई दुनिया की स्थापना के खातिर है, भगवान ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो त्याग करना सहज हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने इतना सहज त्याग कैसे किया? कितनी बड़ी बाबा की बिजनेस थी, राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, अंग्रेज लोगों के साथ भी कितना बाबा का होगा ना, वो भी तो क्वीन विक्टोरिया भी उनके दुकान पर आई थी, बाबा की दुकान पर। वो तो उस समय तो हीरे जवाहरात के जेवर बहुत खरीदते थे अंग्रेज लोग। तो लेकिन जैसे ही बाबा ने ये अनुभव किया कि भगवान मेरे से अब सत्यु की स्थापना करा रहे हैं और मैं ही नर नारायण बनूंगा, विष्णु ने कहा तत्त्वम, तो मेरे जैसे ही स्वरूप हो। और विनाश देखा, नई दुनिया देखी और भगवान का उनको काम मिल गया कि ये दुनिया तुमको बनानी है, तो फट से त्याग किया, क्योंकि इतना बड़ा कार्य भगवान का मिल रहा है तो या मैं धंधा बैठ के करूंगा, और हीरे तो पत्थर दिखाई देने लगे। एक ढक से त्याग किया, एक ढक से, इन्हें धीरे 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 बिजनेस वाइंड अप नहीं की, उसी वक्त एक सेकेंड भी नहीं, आगे आगे कुछ नहीं सोचा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोत्रों का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। भगवान ने कहा अब आपको ये कार्य करना है, और कैसे बाबा ने कितनी मदद की, साक्षात्कार बाबा ने कराए उनके द्वारा। बाबा को खुद हैरानगी होती थी, ये मैं तो साधारण हूं, ये कैसे मुझे श्री कृष्ण रूप में देख रहे हैं, पर लोगों को श्री कृष्ण दिखाई देता था, चमत्कार दिखाई देने लगे। और बाबा के मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितना इतना जरूर किया, त्याग किया, त्याग किया बस, और कुछ नहीं। और कितना बड़ा भाग्य बन गया, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने लिए एक बीज केवल डाला, बीज डालो पूरा वृक्ष प्राप्त करो। तो त्याग है एक बीज और वृक्ष, फलदार वृक्ष मिल गया, ये कितना बड़ा भाग्य है। तो बिना त्याग के भाग्य नहीं, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं, जब ये हम बुद्धि में सोचते हैं ना, तो त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। त्याग त्याग लगता ही नहीं है, और ये जीवन इतनी निश्चिंत बन जाती है। छोटे बच्चे बन जाओ, बाबा कहते हैं बालक बनो, बालक भी बनो मालिक भी बनो, ये बैलेंस रखो। संगठन में मालिक, संगठन में बालक बन जाओ, आप अपनी राय देने में आप मालिक बनो, आपसे कोई राय मांगी जा रही है आप मालिक बन के अपनी राय दो, लेकिन फिर जो स्वीकार हुआ संगठन में वो बालक बन के स्वीकार कर लो। तो बालक बन के स्वीकार किया तो त्याग हो गया, और अगर आपकी राय मानी गई तो भाग्य बन गया, और त्याग भी किया तो सबके साथ स्वीकार भी किया तो ऑटोमेटिकली भाग्यशाली तो बन ही गए। लेकिन मेरी बात माननी चाहिए, मैं जो कहता हूँ ये होना चाहिए, मैं ही करूँगा मैं। तो बाबा कहते हैं मैं करते रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। उस कल भी बाबा ने कहा जिद करेंगे सिद्ध करेंगे, ये सब त्याग चाहिए, न जिद करो न सिद्ध करो, न अभिमान रखो, जितने नम्र बनते हैं उतने और महान बनते हैं। तो ये नम्र रहना भी बड़ा त्याग है, बड़ा त्याग है। बाबा की एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था, कई कहते हैं बच्चे बाबा मुझे ही मरना पड़ता है, मैं ही मरूं, मैं ही त्याग करूं। बाबा कहते हाँ तुमको ही करना है, हाँ करना है, लेकिन ये त्याग भाग्य का आधार है। तो वक्त जब भी किसी को कुछ त्याग करना पड़े ना, तुरंत करो। कोई आपसे कुछ चीज मांगता है, भले पेट को पट्टी बांधो, पर मांग रहा है ना नहीं करना, ना नहीं करना। कल्याण उसका भी है आपका भी है, पर हाँ अकल्याण की जहां बात आती है वहां तो बिल्कुल ना करो, वो अलग बात है। पर जहां सेवा की बात आती है वहां ना कभी नहीं करो ना। कई बार हम बहनों को भी यही सिखाते हैं, अब आप सेंटर पर हो, कोर्स करा रही हो, अब थक गई आप, अब थक गई तो फिर आप और जिज्ञासु आ गया, आप कहेंगे अभी तो मैं नहीं कोर्स कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी। लेकिन आप ये उस समय सोचो ये बाबा ने भेजा है, आपका इसे भाग्य बनेगा। तो जैसे संकल्प को चेंज किया तो त्याग त्याग लगेगा नहीं, वो भाग्य है। तो कदम कदम पर भाग्य हमारा बन रहा है ये कभी नहीं भूलो। परंतु अगर देह अभिमान आ गया तो यो भाग्य खत्म। तेरा मेरा आ गया, थोड़ा लोभ आ गया, थोड़ी ईर्ष्या आ गई, थोड़ी नफरत आ गई, भाग्य खत्म, वो पाप के खाते में जाएगा। इसीलिए बाबा कहते कदम कदम पर बिल्कुल सोच समझ कर हर कर्म करो। जहां त्याग त्याग न लगे और भाग्य बन रहा है पर उस भाग्य की चिंता नहीं, इसको बाबा कहते देना है देना है देना है, तब देवता बनेंगे। पता है भाग्य का पता है, क्योंकि निष्काम कर्म तो कोई होता ही नहीं है, एक बाबा ही है जो निष्काम कर्म करता है। करता है तो भी कर्म तो बहुत करते हैं ना बाबा, मेन एक्टर तो बाबा ही, आज भी बाबा ने कहा। तो इसीलिए हर कर्म हर कदम पर ये सोचो कि मुझे पहले त्याग करना है। जब अपने आप को बदलने की बात आती है पहले मैं मुझे बदलना है। या कुछ लेने की बात आती है ओके पहले आप, कोई बात नहीं पहले आप, पर आप पीछे नहीं रह जाएंगे, किसको आगे करने से आप पीछे नहीं रह जाएंगे। तो कैसे बाबा हम बच्चों को कर्म की गति बताते हैं, जिस कर्म की गति के आधार से हमारा ये जीवन तो सफल हो ही जाता है, लेकिन भविष्य जन्म जन्म हमारा कितना सफल होता है वो बाबा जाने हम जाने। तो इसीलिए यहां से आप जाएंगे बिल्कुल ऐसी अमिट छाप अपने जीवन पर लगा कर जाना, परिवर्तित होकर जाना, अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति सबको इतना ऊंच बना के जाना, ये दृष्टि भी मेरी कमल समान हो, कमल नैन हो, क्या देखना है क्या सुनना है क्या बोलना है उसे भी त्याग त्याग, ये सब त्याग का ही रूप है ना। पर चिंतन नहीं सुनना है, क्यों सुने हम, ये त्याग करो। पर निंदा पर ग्लानी पर मत, भगवान का ही सुनो। कल भी बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे नहीं बाबा आप तो एक हो ही, पर एक और एक और, अगर एक और किया ना तो माया जाल में फंस जाएंगे। हम मिसाल देते ना, एक सन्यासी था तो अब रोज उसको दूध मिलता था, गांव से दूध आता था, अब रोज दूध लाता था तो एक दिन वो नहीं लाया तो कुछ भी उसको मिला नहीं, दूध चाहिए होता है तो किसी ने उसको कह दिया अरे क्यों आप दूध गांव से मंगाते हो, एक गाय रख लो। तो ठीक है, वो गाय भी उसको देके गया कि ये गाय आप रख लो, इसी से आपको दूध मिलेगा। अब गाय को पाले कौन, फिर एक औरत रख लिया, वो रोज दूध को देती थी, उस गाय से संभालती थी। और धीरे धीरे क्या हो गया, हाँ, फिर वो औरत से ही उसका ओम शांति हो गया है ना, हाँ, फिर उसी से ही संबंध हो गया, फिर उसके बच्चे हो गए गाय एक दूध के पीछे, तो देखो गृहस्थी बना ली। पर किस आधार पर बनाया, बस दूध हमको उनसे चाहिए। इसलिए जो पहले सन्यासी होते थे ना, वो सन्यासी अभी भी होगा, घर में कभी खाना नहीं पकाते थे, तभी सन्यासी उनको मानते हैं। अगर वो चूल्हा जलाए ना, वो सन्यासी नहीं कहलाएगा कि चूल्हा जलाया। अभी यहाँ भी माउंट आबू में एक, हम पहले बहुत राखी बांधने जाते थे, कई गुफाएं अभी भी है, तो हम राखी बांधने जाते थे तो हम देखते थे उनके घर में कोई चूल्हा नहीं जलता, मतलब उनका जो कुटिया है या जो भी है। तो हम उनसे पूछते थे कि आपका भोजन कहाँ से आता है, यहाँ कोई पकाते नहीं है? तो कहा नहीं, हमारे जो सेवक हैं, जो गृहस्थी है, वो हमारे शिष्य हैं, वो देखे जाते हैं। तो उसने बताया कि सन्यासी उसी को कहा जाएगा जो कभी खुद खाना नहीं पकाता है, वो सन्यासी कहलाता है, किसी का भी खा लेंगे। पर यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है, किसी का भी खा लेंगे नहीं, क्योंकि हम पकाते नहीं। यहाँ तो बाबा कहते बाबा को भोग लगाना है, चलो गृहस्थी बन जाती है, लेकिन शुद्ध अन्न खाना है। शुद्ध अन्न खाने के लिए पकाना तो पड़ेगा, दुनिया में क्या क्या खाते हैं पता भी नहीं चलता है, क्या क्या कैसे कैसे इनको परोसते भी होंगे, होटलों में क्या लगा पड़ा है, फिर किसमें जहर मिला दे तो पता भी न चले। आजकल तो वो भी बहुत डर है। अभी हम नागपुर गए थे तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी आए थे, गवर्नर भी आए थे, तो हमने कहा इनका भोजन नहीं रखा, तो कहा नहीं भोजन ये लोग खाते ही नहीं है कहीं, क्योंकि फिर वो सारा टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं जहर वहर मिल गया तो पहले उनकी बहुत बहुत उनकी परहेज होती है, इनका प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही नहीं कहीं भी खाते हैं। तो ये भी देखो बड़ा आदमी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो ऐसे सब जगह नहीं खाते हैं। और हमारी तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, भगवान ने हमको क्या नहीं जिम्मेदारी दी है, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, नया विश्व बना रहे हैं, इसीलिए अन्न को तो शुद्ध करना है। वो तो इस डर से नहीं खाते हैं कि कहीं किसने उसमें पॉइजन तो नहीं डाल दिया, जहर तो नहीं डाल दिया। इसलिए वो उनके होते जो उनको हर चीज़ को पहले टेस्ट करेंगे, पानी भी टेस्ट करेंगे, ऐसे ही नहीं किसको देंगे, उनको देंगे। बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, बड़ों के तो बहुत झमेले हैं, छोटे इन बातों से तो दूर है। इसीलिए बाबा कहते हैं न्यारे प्यारे रहो, बहुत बड़े बहुत दूर तक जाना है मुझे, बड़ा पद चाहिए। बाबा कहते कलयुग की दुनिया में उसके पीछे भी मत पड़ो, आज बहुत ऊंचा गए कल ऐसे गिरा देंगे आपको जो पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सिंपल ब्यूटीफुल, ऊंचा सोचो, सोच ऊंची हो, थिंक हाई पर लिव सिंपल, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो अगर है तो सचमुच त्याग भी है तो भाग्य भी है। बस यही सदा अपने साथ रखना, बाबा हमें यही सिखाते हैं। और कितना कदम कदम पर भाग्य बना रहे हैं, ये अनुभव भी करते जाना, खुशी की खुराक खाते रहना, और साथ साथ हाँ बाबा से मंगल मिलाते रहना। बाकी तो दुनिया को न जीता देखो, एक बाबा दूसरा न कोई, तो यही सच्चा त्याग सौभाग्य है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।